अध्याय 3 ब्राह्मण ग्रंथ 1 ब्राह्मण का अर्थ। ब्राह्मण शब्द की व्युत्पत्ति। ब्राह्मण ग्रंथों के अर्थ में ब्राह्मण शब्द विभिन्न तीन अर्थों को लेकर ब्राह्मण शब्द से अण अप्रत्यय करके बना है। ये तीन अर्थ हैं। एक, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण शब्द का अर्थ है मंत्र, अतः वेद मंत्रों की व्याख्या और विनियोग प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण कहते हैं। 2, शतपथ के अनुसार ही ब्राह्मण शब्द का दूसरा अर्थ यज्ञ है, अतः यज्ञों की व्याख्या और विवरण प्रस्तुत करने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण कहते हैं। 3, ब्राह्मण शब्द का एक अन्य अर्थ है पवित्र ज्ञान या रहस्यात्मक विद्या, अतः जिन ग्रंथों में वैदिक रहस्यों का उद्घाटन किया गया है उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। इन ग्रंथों में यज्ञों का आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं वैज्ञानिक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। श्री सत्यव्रत रामाश्रमी ने ब्राह्मण शब्द की एक अन्य व्युत्पत्ति दी है। उन्होंने ब्राह्मण शब्द से प्रोक्त कोष्ठक कथित वर्णित कोष्ठक बंद अर्थ में अण कोष्ठक में अ प्रत्यय करके ब्राह्मण शब्द की सिद्धि की है। इसका अभिप्राय है कि ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ विषयक व्याख्या रूप में निर्मित ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ब्राह्मण का अर्थ। मीमांसा दर्शन का कथन है कि मंत्र भाग या संहिता ग्रंथों के अतिरिक्त वेद भाग को ब्राह्मण कहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि संहिता भाग में पद्य गद्य या गीत के रूप में मंत्र हैं, उनके अतिरिक्त व्याख्या ग्रंथों को ब्राह्मण कहते हैं। भट्ट भास्कर का कथन है कि कर्मकांड और मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथों को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तन मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथः। वाचस्पति मिश्र ने वर्ण विषयों का निर्देश करते हुए कहा है कि ब्राह्मण उन ग्रंथों को कहते हैं जिनमें निर्वचन निरुक्ति मंत्रों का विविध यज्ञों में विनियोग प्रयोजन प्रतिष्ठान अथवा अर्थवाद और विधि का वर्णन होता है। नैरुक्तयम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम् प्रतिष्ठान विधिश्चैव ब्राह्मणम् तदिहोच्यते। ब्राह्मण और अनुब्राह्मण। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि ग्रंथ अर्थ में ब्राह्मण शब्द नपुंसक लिंग है। मेदिनीय कोश के अनुसार वेद भाग का सूचक ब्राह्मण शब्द नपुंसक लिंग होता है। ब्राह्मण शब्द का ग्रंथ अर्थ में प्रयोग अष्टाध्यायी निरुक्त शतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण आदि में प्राप्त होता है। इसका बहुवचन में प्रयोग ब्राह्मणानि तैत्तिरीय आरण्यक में प्राप्त होता है, वहाँ इसका 3 बार प्रयोग हुआ है। पाणिनी के अष्टाध्यायी में अनुब्राह्मण ग्रंथों का भी उल्लेख मिलता है। काशिका में ब्राह्मण के सदृश ग्रंथ को अनुब्राह्मण कहा है। ब्राह्मण सदृशो ग्रंथो अनुब्राह्मणम्। आशय ब्राह्मण में स्वयं इस ग्रंथ को अनुब्राह्मण कहा गया है। आश्वलायन श्रौत सूत्र एवं वैतान श्रौत सूत्रों में भी अनुब्राह्मण ग्रंथों का उल्लेख है। ये अनुब्राह्मण लघुकाय ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनमें किसी एक अंश का ही विवेचन मिलता है। मंत्र और ब्राह्मण। संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों का स्वतंत्र अस्तित्व है। संहिताओं में उपलब्ध मंत्र भाग का कर्मकांड में विनियोग होता है। ब्राह्मण भाग मंत्रों के विनियोग की विधि बताता है। एक मूल है और दूसरा उसका व्याख्यान या भाष्य। यज्ञों में मंत्रों से ही आहुति दी जाती है। ब्राह्मण भाग उसकी उपयोगिता और विधि बताता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वेद शब्द मुख्य रूप से वैदिक संहिताओं का ही वाचक है, ब्राह्मण ग्रंथों का नहीं। वैदिक वाङ्मय या वैदिक साहित्य में ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषदों का भी समावेश है। वेद शब्द का गौण अर्थ वैदिक साहित्य लेने पर ब्राह्मण ग्रंथों को भी वेद कहा जा सकता है। इसी गौण अर्थ को लेते हुए मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम् आपस्तम्भ श्रौत सूत्र अर्थात मंत्र संहिता ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथों को वेद कहते हैं। यह उक्ति प्रचलित हुई है। यही भाव आपस्तम्भ श्रौत सूत्र बौधायन गृह सूत्र कौशिक सूत्र तंत्र वार्तिक शांकर भाष्य वेदांत दर्शन आदि में भी प्रकट किया गया है। मंत्रों और ब्राह्मणों में वस्तुतः मौलिक भेद है, यथा भावभेद रचनाभेद विषयभेद और प्रक्रियाभेद। अतएव वास्तविक दृष्टि से ब्राह्मणों को वेद कहना अनुपयुक्त है। गौण अर्थ में ही वेद में उनका समावेश संभव है। संहिता और ब्राह्मणों का विषय भेद। संहिता ग्रंथों और ब्राह्मण ग्रंथों के स्वरूप में तथा विषयों में अत्यंत पृथकता है। संक्षेप में ये भेद हैं। 1, स्वरूप के दृष्टि से संहिता ग्रंथ अधिकांश छंदोबद्ध हैं। यजुर्वेद और अथर्वेद के कुछ अंश गद्यात्मक हैं, परंतु ब्राह्मण ग्रंथ सर्वथा गद्यात्मक है। 2, विषय की दृष्टि से दोनों में भेद है। ऋग्वेद में देवस्तुतियों की प्रधानता है, यजुर्वेद में विविध यागों का वर्णन है, अथर्वेद में रोग निवारण, शत्रु नाशन आदि विषय है, परंतु ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय विधि अर्थात यज्ञ कब और कहाँ किया जाए, यज्ञ के अधिकारी, यज्ञ के लिए आवश्यक साधन और सामग्री आदि। संहिता ग्रंथ स्तुति प्रधान है तो ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान। भाव और भाषा के दृष्टि से दोनों में भेद है। संहिताओं में देवस्तुति है और ब्राह्मणों में विधि विधान की व्याख्या। वेदों की अपेक्षा ब्राह्मणों की भाषा सरल और सरस है। शब्द रूपों और धातु रूपों की विविधता कम हो गई है। समास आदि का प्रयोग बहुत कम हो गया है। ब्राह्मणों की भाषा और शैली। संहिता ग्रंथ की अपेक्षा ब्राह्मणों की भाषा में और प्रसाद गुण का बाहुल्य है। भाषा सरल, सरस और रोचक है। इनमें प्रयत्न किया गया है कि वर्ण विषय को दुरूहता को कम किया जाए। अतएव लंबे समासों, क्लिष्ट पदों और अस्पष्टार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। शैली प्रवाह युक्त और रोचक है। विविध आख्यानों के प्रसंग में शैली की रोचकता दर्शनीय है। ब्राह्मणों की भाषा वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को जोड़ने वाली सुंदर कड़ी है। यज्ञीय दार्शनिक एवं गूढ़ प्रसंगों को भी सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। ब्राह्मणों में वैदिक और लौकिक शब्दावली का समन्वय है। शब्द रूपों की विविधता ऋग्वेद की अपेक्षा बहुत कम है। वैदिक लेट लकार का प्रयोग अति विरल है। तुमर्थक प्रत्ययों के प्राचीन रूप कहीं कहीं दृष्टिगोचर होते हैं। ब्राह्मणों में छंदों का नियंत्रण न होने से भाव प्रकाशन की पूर्ण स्वतंत्रता है। कहीं कहीं गाथा छंदों से मिलते हुए पद भी प्राप्त होते हैं। ऐसे पद मुख्यतया आख्यानों में ही प्राप्य हैं। ऋषि और आचार्य में भेद। आश्वलायन गृहसूत्र में ऋषि और आचार्य में भेद किया गया है। ऋषि मंत्र दृष्टा को कहते हैं और ब्राह्मण ग्रंथों के दृष्टा या रचयिता को आचार्य कहते हैं। अतएव आश्वलायन गृहसूत्र में ऋषि तर्पण के साथ ही आचार्य तर्पण का भी उल्लेख है। आचार्यों के तीन गण बताए गए हैं, एक मांडुकीय गण, दो शांखायन गण, तीन आश्वलायन गण। इसी प्रसंग में आचार्यों के भी नाम गिनाए गए हैं। उनमें विशिष्ट नाम ये हैं जो विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथों के रचयिता हैं, कौशितक, भरद्वाज, शांखायन, ऐतरेय, बाष्कल, शाकल, गार्ग्य, शौनक और आश्वलायन। दो, ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय। ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है यज्ञ एवं यज्ञ प्रक्रिया का सर्वांगीण विवेचन। यज्ञ मीमांसा के दो मुख्य भाग हैं, विधि और अर्थवाद। एक, विधि का अभिप्राय है यज्ञ प्रक्रिया का विशद निरूपण, जैसे यज्ञ कब, कहां, कैसे किया जाए, यज्ञ के लिए कितने ऋत्विज चाहिए, प्रत्येक के क्या कर्तव्य है, यज्ञ के लिए क्या क्या समान चाहिए, यज्ञशाला का निर्माण आदि। अतएव आपस्तंभ का कथन है कर्म चोदना ब्रह्मणानी, अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ विविध यज्ञ रूप कर्मों में मनुष्यों को प्रेरित करते हैं। दो, अर्थवाद का अभिप्राय है स्तुति या निंदा परक विविध विषय। यज्ञीय कर्म कांड में विहित विधानों की अनेक प्रकार से प्रशंसा की जाती है, साथ ही निषिद्ध कर्मों की निंदा की जाती है। इस प्रकार के विषय अर्थवाद के अंतर्गत आते हैं। वाचस्पति मिश्र ने ब्राह्मण ग्रंथों के चार प्रयोजन बताए हैं। ये हैं, एक, निर्वचन, शब्दों की निरुक्ति बताना, किसी वस्तु का वह नाम क्यों पड़ा, उसका आधार क्या है तथा किस धातु से वह नाम बना। दो, विनियोग, किस यज्ञ के किस विधि में किन मंत्रों का पाठ किया जाएगा, किस कार्य के लिए कौन सा मंत्र निर्दिष्ट है, इसका पूरा विवरण बताना। विनियोग का अभिप्राय है कौन सा मंत्र किस कार्य के लिए, इसका निर्देश देना। तीन, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान का अभिप्राय है अर्थवाद, यज्ञ की प्रत्येक विधि का क्या महत्व है, उसके करने से क्या लाभ है, उसके न करने से क्या हानियां हैं। इस प्रकार यज्ञ की विधियों की प्रशंसा करना और उसके समर्थन में कोई उपाख्यान आदि प्रस्तुत करना, साथ ही यज्ञ में निषिद्ध कार्यों की निंदा करना और उनके दोष बताना भी अर्थवाद के अंतर्गत आता है। चार, विधि, यज्ञ और उससे संबद्ध कर कार्यकलाप का विस्तृत विवरण बताना, यज्ञ कब, कहां, कैसे किया जाएगा, किस यज्ञ के लिए क्या सामग्री अपेक्षित है तथा कौन सा ऋत्विज क्या काम करेगा आदि का विशद वर्णन करना। नैरुक्त्यम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम् प्रतिष्ठानम् विधिश्चैव ब्राह्मणम् तदिहोच्यते। मीमांसा दर्शन के भाष्य में शबर स्वामी ने इन्हीं विषयों को कुछ और विस्तृत करते हुए ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषयों की संख्या 10 बताई है। हेतुर निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशैते तु विधियो ब्राह्मणस्य वही। 10 विषय ये हैं। 1 हेतु, यज्ञ में कोई कार्य क्यों किया जाता है इसका कारण बताना। 2 निर्वचन, शब्दों की निरुक्ति बताना, जैसे नद कोष्ठक में शब्द करना, धातु से नदी शब्द। 3 निंदा, यज्ञ में निषिद्ध कर्मों की निंदा, जैसे यज्ञ में असत्य भाषण निषिद्ध है, असत्य भाषण की निंदा करना। 4 प्रशंसा, यज्ञ में विहित कार्यों की प्रशंसा करना, जैसे यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, अर्थात यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है, अतः अवश्य करना चाहिए, इस प्रकार यज्ञ की प्रशंसा करना। 5 संशय, किसी यज्ञ कर्म के विषय में कोई संदेह उपस्थित हो तो उसका निवारण करना, यह कार्य इस प्रकार से ही किया जाए, इसका स्पष्ट निर्देश करना। 6 विधि, विधि का अभिप्राय है यज्ञ क्रियाकलाप की पूरी विधि का विशद निरूपण, कौन सा कार्य पहले किया जाए तथा उसके बाद के कार्यों का तारतम्य से विवरण प्रस्तुत करना। 7 परक्रिया, इसके अर्थ के विषय में पर्याप्त मतभेद है, परक्रिया का भाव है परार्थक क्रिया, परहित या परोपकार वाले कर्तव्यों का वर्णन, इसमें इष्टपूर्त इष्टापूर्त का समावेश है, इष्ट का अभिप्राय है विविध याग आदि, पूर्त का अभिप्राय है धर्मार्थ कार्य, जैसे कूप तड़ाग आदि का निर्माण, धर्मशाला अनाथालय आदि का निर्माण, ब्राह्मण ग्रंथ ऐसे जनहित के कार्यों का उपदेश देते हैं। 8 पुराकल्प, यज्ञ के विभिन्न विधियों के समर्थन में किसी प्राचीन आख्यान या ऐतिहासिक घटना का वर्णन करना, जैसे राजा के अभाव में जनता भयभीत रहती थी, अतः राजा के वर्ण की व्यवस्था की गई। हरिश्चंद्रोपाख्यान में प्रसिद्ध चरैवेति चरैवेति चलते रहो आदि निर्देश। 9 व्यवधारण कल्पना, परिस्थिति के अनुसार कार्य की व्यवस्था करना, सायण ने इसका उदाहरण दिया है, जितने घोड़े हो उतने जल भरे पात्र रखे, घोड़ों की संख्या के अनुसार उनके लिए पीने के पात्र रखने हैं। इसी प्रकार यज्ञादि में अभ्यागतों की संख्या के अनुसार आसनों की व्यवस्था की जाएगी। 10 उपमान, कोई उपमा या उदाहरण देकर वर्ण विषय की पुष्टि करना, जैसे ऐतरीय ब्राह्मण में चरैवेति की पुष्टि में सूर्य का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। सूर्य निरंतर चलता रहता है, अतः उसकी तेजस्विता बनी रहती है। सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम् यो न तंद्रयते चरन् चरैवेति। ब्राह्मणों में विधि और अर्थवाद के अतिरिक्त उपनिषद का भी प्रतिपादन किया गया है। ब्राह्मणों में यज्ञ आदि की आध्यात्मिक दार्शनिक और वैज्ञानिक व्याख्याएं भी प्रस्तुत की गई हैं। यज्ञ केवल कर्मकांड नहीं है अपितु श्रेष्ठ विद्या का प्रतीक है। इसके द्वारा सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट किया गया है। जैसे यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण आदि में यज्ञ को विष्णु कहा गया है। इसका अभिप्राय यह है कि यज्ञ ब्रह्म प्राप्ति का साधन है। विष्णु के 3 पग द्युलोक अंतरिक्ष और पृथ्वी है। वह सर्व व्यापक है, उसकी प्राप्ति के लिए यज्ञ है। यह आध्यात्मिक और दार्शनिक व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथ ही करते हैं। वाक ब्रह्म है, मन ब्रह्म है, वाणी का संयम और मनोनिग्रह ब्रह्म की उपासना है। यजुर्वेद के 1 मंत्र में जल के विराट रूप की वैज्ञानिक व्याख्या की गई है। शतपथ ब्राह्मण की सहायता के बिना इस मंत्र का अर्थ सर्वथा दुरूह है। इसमें मंत्र में दिए एमन ओदमन भस्मन शरीर क्षय योनि पुरीष पाथस आदि पारिभाषिक शब्दों का अर्थ शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से स्पष्ट किया गया है। जल के आधार पर ही द्यू भू अंतरिक्ष विद्युत प्राण मन वाक चक्षु श्रोत्र समुद्र वनस्पतियों आदि की सत्ता है। यदि संसार में जल सोम्य तत्व न हो तो संसार की किसी भी वस्तु का अस्तित्व संभव नहीं है। इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथ न केवल यज्ञ की विधि का ही वर्णन करते हैं अपितु वेदों में प्राप्त आध्यात्मिक दार्शनिक और वैज्ञानिक तथ्यों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करते हैं। इस दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक वाङ्मय के अति महनीय ज्ञान कोश है। 3 ब्राह्मण ग्रंथों का शास्त्रीय महत्व, विवेच्य विषयों पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि ब्राह्मणों का शास्त्रीय महत्व है। इसके मुख्य कारण ये हैं। 1 ब्राह्मणों में यज्ञों के नाना रूपों का विशद वर्णन है। विविध यज्ञों के क्रियाकलाप का सांगोपांग उल्लेख है। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ को एक वैज्ञानिक संस्था के रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक विधि में निहित गुणार्थ का वे स्पष्टीकरण करते हैं। दो, विविध निर्वचनों के द्वारा निरुक्त शास्त्र का मूल इनमें प्रतिष्ठित है। इन निर्वचनों के आधार पर आगे निरुक्त शास्त्र पल्लवित हुआ है। तीन, पुराणों आदि में वर्णित आख्यानों के मूल तत्व ब्राह्मण ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं। परकालीन साहित्य में इनके आधार पर अनेक कथानक प्रस्तुत किए गए हैं। चार, ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड के प्रथम प्रचारक हैं। कर्मकांड का सांगोपांग विवेचन इनमें प्राप्त होता है। पांच, संगीत शास्त्र का शास्त्रीय अध्ययन सामवेदी ब्राह्मणों में विशेषतया प्राप्त होता है। छह, ब्राह्मणों में आध्यात्म की प्रतिष्ठा है। इनके आधार पर ही परकालीन उपनिषद साहित्य विकसित हुआ है। सात, शतपथ ब्राह्मण आदि में दी गई वेदी निर्माण विधि परकालीन सुलभ साहित्य रेखा गणित और ज्यामितीय शास्त्र की आधारशिला है। आठ, ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित वैज्ञानिक तथ्य परकालीन वैज्ञानिक विकास के पूर्व रूप हैं। नौ, ब्राह्मणों में वर्णित भौगोलिक तथ्य देश नाम आदि भूगोल शास्त्र को अनुपम देन है। दस, ब्राह्मणों में वर्णित कृषि व्यापार और वाणिज्य आदि से संबद्ध विवरण अर्थशास्त्रीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 11, ब्राह्मणों में वर्णित वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था आदि का विवरण समाज शास्त्रीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 12, ब्राह्मणों में वर्णित सभा समिति राज्य शासन विविध शासन प्रणालियां राजनीति शास्त्र के लिए विशिष्ट देन है। 13, ब्राह्मणों में प्राप्य ब्रह्म विवेचन नीति शिक्षा आचार शिक्षा आदि से संबद्ध तथ्य भारतीय दर्शन की आधारशिला है। 14, ब्राह्मणों में प्राप्य मनस तत्व का विवेचन जीवन और मृत्यु की समीक्षा मनोविज्ञान के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। 4, ब्राह्मण ग्रंथों का वर्गीकरण वेदों के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों का वर्गीकरण इस प्रकार है। क, ऋग्वेदीय ब्राह्मण। 1, ऐतरीय ब्राह्मण। 2, शांखायन ब्राह्मण। 2, शुक्ल। ख, शुक्ल यजुर्वेदीय शतपथ ब्राह्मण। ग, कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय ब्राह्मण। घ, सामवेदीय। 5, पंचविंश तांडिया प्रौढ़ ब्राह्मण। 6, षड्विंश ब्राह्मण। 7, सामविधान ब्राह्मण। 8, आशय ब्राह्मण। 9, देवताध्याय ब्राह्मण। 10, मंत्र ब्राह्मण। 11, संहितोपनिषद ब्राह्मण। 12, वंश ब्राह्मण। 13, जैमिनीय ब्राह्मण। 14, जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण। ग, अथर्वेदीय गोपथ ब्राह्मण। अनुपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथ। डॉक्टर भट्ट कृष्ण घोष ने 14 अनुपलब्ध ब्राह्मणों के इतस्ततः प्राप्य उद्धरण एकत्र किए हैं। इनके नाम है 1, शाक्यायन, शाट्यायन। 2, भाल्लवी जैमिनीय तवलकार। 4, आह्वरक। 5, कंकति। 6, कालबवी। 7, चरक। 8, छागलेय। 9, जाबाली। 10, पैंगायनी। 11, मांस शरावी। 12, मैत्रायणीय। 13, रौरुकी। 14, शैलाली। 15, श्वेताश्वतर। 16, हरिद्रविक ब्राह्मण। इनमें शाट्यायन ब्राह्मण महत्वपूर्ण ज्ञात होता है। सायण ऋग्वेद तथा तांड्य ब्राह्मण के भाष्य और में और शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में इसके 70 से अधिक उद्धरण दिए हैं। भाल्लवी ब्राह्मण का उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य और काशिका में मिलता है। आपस्तंभ श्रौत सूत्र में शैलाली ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है। श्री पंडित भगवत दत्त ने उक्त 16 ब्राह्मण ग्रंथों के अतिरिक्त 8 अन्य ब्राह्मण ग्रंथों का उल्लेख किया है। इनके नाम हैं 1, काठक ब्राह्मण। 2, खांडिकेय। 3, औखेय। 4, गालव। 5, तुम्बरु। 6, आरुणेय। 7, सौलभ। 8, पराशर ब्राह्मण। प्राचीन और नवीन ब्राह्मण। इतिहास की दृष्टि से पाणिनि का सूत्र पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेषु महत्वपूर्ण है। इसमें प्राचीन और नवीन ब्राह्मण ग्रंथों का उल्लेख है। सूत्र में प्राचीन के लिए पुराण शब्द है। इसकी व्याख्या की गई है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन आचार्यों के द्वारा बनाए गए हैं उनसे ऋणिनी। कोष्ठक में इन प्रत्यय कथित या निर्मित अर्थ में होता है। प्राचीन ब्राह्मणों में इन ब्राह्मणों का उल्लेख है। ऐतरेय शाट्यायन और भाल्लवी ब्राह्मण। इसी प्रकार प्राचीन कल्पसूत्रों में पैंगकी कल्पसूत्र का उल्लेख है तथा नवीन कल्पसूत्रों में आश्मरथ कल्पसूत्र है का। पाणिनि के इस सूत्र से स्पष्ट है कि पाणिनि के समय तक ब्राह्मण ग्रंथों और कल्पसूत्रों की रचना हो रही थी। पाणिनि ने पूर्ववर्ती आचार्यों को पुराण या प्राचीन कहा है, शेष नवीन आचार्य थे। ऐतरेय आदि ब्राह्मण प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कहे जाते थे। ब्राह्मण ग्रंथों के तुल्य ही कल्पसूत्रों की भी उस समय तक रचना हो रही थी। प्राचीन कल्पसूत्रों में पैंगी कल्प का वर्णन तथा नवीन कल्पसूत्रों में आश्मरथ कल्पसूत्र की गणना है। इस सूत्र के आधार पर यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि ब्राह्मण ग्रंथों और कल्पसूत्रों के रचना काल की अपर सीमा 5वीं शती ईसा पूर्व समझी जानी चाहिए।